आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में नेता के रूप में अपना पहला भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक महत्वपूर्ण मिडल पावर के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस भाषण के माध्यम से जलवायु संकट से निपटने और शांति स्थापना प्रयासों में और अधिक वैश्विक सहयोग के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा 2026 में अगले कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक सीट हासिल करने का भी दबाव बनाया। SBS हिंदी के लिए ये रिपोर्ट अनीता बरार के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने पहले नेता भाषण में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने ऑस्ट्रेलिया को एक महत्वपूर्ण मिडिल पावर के रूप में बढ़ावा दिया। उनका कहना है कि शांति स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक सीट के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी के लिए भी प्रयास कर रहा है।
The United Nations is much more than an arena for the great powers to veto each other's ambitions. This is a platform for middle powers and small nations to voice and achieve our aspiration. And that is why Australia is seeking a place on the UN Security Council in 2029-30. And it is why we are bidding to co-host the 31st Conference of the Parties with our Pacific family, nations for whom climate change is more than an environmental challenge, it is an existential threat.
सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को वैश्विक कूटनीतिक प्रासंगिकता प्रदान करने के इन प्रयासों के अलावा प्रधानमंत्री के भाषण में दुनिया के देशों को जलवायु परिवर्तन और शांति स्थापना पर सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया और चेतावनी भी दी गई कि इन प्रयासों को जारी रखने के लिए हमेशा अकेले अमेरिका पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अब ये ऐसे समय पर आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका वैश्विक नेता के रूप में अपनी जगह लगातार खोता जा रहा है और अधिनायकवाद और क्षेत्रीय संघर्ष के बढ़ने से नियमों पर आधारित व्यवस्था को खतरा है। अल्बनीजी का कहना है कि आज जब युद्ध और वैश्विक अस्थिरता दुनिया को और अधिक अपनी चपेट में लेने का खतरा पैदा कर रही है, वो संयुक्त राष्ट्र को ऐसे समय में एक आवश्यक कूटनीतिक साधन के रूप में देखते हैं।
If the United Nations steps back, we all lose ground. If we give people reason to doubt the value of cooperation, then the risk of conflict becomes the default option, which grows. If we allow any nation to imagine itself outside the rules or above them, then the sovereignty of every nation is eroded.
अल्बनीजी के भाषण से एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में एक तीखा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की आलोचना की जिन्होंने अब फेलेस्टीनियन स्टेटहुड का दर्जा स्वीकार कर लिया है, और यूरोपीय नेताओं से कहा कि उनके देश नर्क में जा रहे हैं। गाजा पर प्रधानमंत्री ने इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का आह्वान दोहराया और लंबे समय से चले आ रहे इसराइली पैलेस्टीनियन संघर्ष के द्विराष्ट्र समाधान के अवसर का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
For decades, leaders have come to this podium in search of new words and new ways to call the world to action on a two-state solution. This week, Australia recognised the state of Palestine. There is a moment of opportunity here. let us seize it.
एंथनी एल्बनीज़ी ने महासभा में अपने भाषण में ऑस्ट्रेलिया को हरित ऊर्जा परिवर्तन में एक विश्व नेता के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास किया. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जलवायु परिवर्तन की पर्यावरणीय चुनौती का सामना करने के लिए कार्य कर रहा है और साथ ही नवीनीकरण ऊर्जा के आर्थिक अवसरों को प्राप्त करने और साझा करने के लिए भी काम कर रहा है.
As a continent home to some of the greatest natural treasures on the planet, and as a nation blessed with the traditional resources, critical minerals, skills and sunlight and space to power the global shift to net zero, Australia is acting to meet the environmental challenge of climate change while working to seize and share the economic opportunities of renewable energy.
उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को ये समझना चाहिए कि आर्थिक विकास और जलवायु संकट पर सार्थक कार्रवाई परस्पर अनन्य लक्ष्य नहीं है.
Clean energy can carry the world beyond the false choice between economic growth and environmental responsibility, because clean energy enables the rapidly growing economies of the Indo-Pacific to industrialise and decarbonise at the same time, and to continue lifting their people's living standards while lowering their nation's emissions.
SBS News के लिए Sam Dawar और SBS हिंदी के लिए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया अनीता बरार ने.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.